এবং সজ্জন, আমি দয়ানন্দকে এক ছোটা সা পুস্তকে আর্য উদ্দেশ্য রত্নমালা স্বমন্তব্যা মন্তব্য প্রকাশ, জিতনে ভি হামারে মন মে শঙ্কায় হে সংসার কে কিসি ভি চিজ কে বারে মে ধার্মিক দৃষ্টি সে ঈশ্বর দেবতা আত্মা পরমাত্মা সংসার পাপ পুণ্য স্বর্গ ইন সবকা জো আনসার হে জো উত্তর হে স্বামী জি কেসা মানতে সমস্তে শাস্ত্র মে কিস তরহ উসকা বর্ণন হে তো উসমে উনহোনে লিখা হে। পিছলি বার হমনে ধর্ম পর চর্চা কি কি স্বামী জি কে বিচার সে আর বৈদিক পরম্পরা মে ধর্ম পরিভাষা ক্যা হে, ধর্ম কা ডেফিনেশন ক্যা হে, ধর্ম কিসকো কেতে হে, অধর্ম কিসকো কেতে হে। আজ জো হম চর্চা করেঙ্গে ঈশ্বর কে বারে মে, ঈশ্বর ক্যা হে, উসকা ক্যা ডেফিনেশন হে, কেসা হে। হিন্দি মে বুক হে, উসকি ইংলিশ ট্রান্সলেশন হে স্বামী জি কা। আজ প্রজেক্টর খারাপ হে, ইসলিয়ে আপকো থোড়ি সি মেরে সাথ সহায়তা করনি পড়েগি। হি হু ইজ কল্ড ব্রহ্ম আর পরমাত্মা মিন দ্য সুপ্রিম বিং হু পারমিটস দ্য হোল ইউনিভার্স, হু ইজ এ পার্সোনিফিকেশন অফ এক্সিস্টেন্স ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ব্লিস, হুজ নেচার অ্যাট্রিবিউটস অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর হোলি পিওর, হু ইজ ওমনিসিয়েন্ট ফর্মলেস অল পারভেটিং আনবর্ন infinite almighty just and merciful, who is the author of the universe and sustains and dissolves it, who awards all souls the fruits of their deeds in strict accordance with the requirement of the absolute justice, and is possessed of the like attributes, even him I believe to be the great god the ishvara। इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमारे हजम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम उसको डाइजेस्ट कर दें तो फिर हमारा जो सेल्फिश नेचर है वो हमें मुश्किल पैदा करेगा। जैसे तब अगर हम ये मान लें हु अवर्ड्स ऑल सोल्स द फ्रूट्स ऑफ देयर डीड्स इन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, अब ये हम कैसे डाइजेस्ट कर लें कि ईश्वर हमारे कर्मों के फलों को बिल्कुल एब्सोल्यूट जस्टिस के बेस पर देता है। फिर तो हमारा जो ब्राइब करने की ईश्वर की जो पूरी सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। कुछ भी पाप करो, कुछ भी बेईमानी करो, किसी भी रिलीजन में कहीं जाकर कन्फेस कर दो, पूजा कर लो, गंगा में डुबकी लगा दो, साल में दो बार वो हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, व्रत रखो, पूजा पाठ रखो, तो इससे तो ये हम सब क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि जो हमारा कर्म है, खास करके जो बुरे कर्म है उसका फल ना मिले, और जो अच्छा कर्म है वो ज्यादा तीन गुना चार गुना फल दे। अगर ये हम ईश्वर की क्वालिटी को मान ले, कितना भी सच हो, हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। इसीलिए हम आमतौर पर ये सब मानने को तैयार नहीं होते। हमें एक ऐसा ईश्वर चाहिए आम आदमी के लिए जो ईश्वर है। वो तो बाइबल में एक सेंटेंस आता है, गॉड मेड दिस वर्ल्ड, संसार को ईश्वर ने बनाया, हम इंसान को ईश्वर ने बनाया। पर अगर रियलिटी में देखें, वो किसी भी रिलीजन का हो इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, जिस ईश्वर को हम पूछते हैं इट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग। हमने एक ईश्वर को बनाया अपनी फायदे के हिसाब से, अपनी सोच को जस्टिफाई करने के लिए, और फिर उसी ईश्वर को हम पूछते अपनी फायदे के लिए। हम उस ईश्वर की रियलिटी के बारे में ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, ना पूजने को तैयार है। जिसने ये संसार बनाया, आपके शरीर को बनाया, आपको बनाया, आपके फिर सिस्टम को बनाया, ऐसा ईश्वर किसी को नहीं चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के जो ईश्वर होता है, ये उस रिलीजन के कर्ता धर्ता, उसको बनाने चलाने वाले धर्माचार्य और उन वो धर्माचार्यों का बनाया हुआ ईश्वर जो कि उनके फॉलोअर्स को शूट करता हो, उनको अच्छा लगता हो। उनको अच्छा क्या लगे कि हम कुछ भी बुरा काम करें, जब हम भगवान की पूजा पाठ करें तो वो सब माफ हो जाए, कोई भी अच्छा काम करे ना करे रिजल्ट सारा अच्छा मुझे ही मिले, मेरे शत्रुओं का विनाश हो जाए वो कितने भी अच्छे हो, मेरे और मेरे चाहने वालों का हमेशा भला हो कितने भी बुरे हो। जितने आप व्रत उपवास पूजा पाठ रखते हैं, क्यों रखते हैं, कौन एक मिलेगा आप में हमारे में से जो इसीलिए रखता है कि बस, जैसे माँ बाप के प्रति, माँ बाप अपने बच्चों के प्रति एक निश्चल प्रेम रखते हैं विदाउट एन एक्सपेक्टेशन, बस रखते हैं इसीलिए कि मेरा मन शुद्ध हो, शरीर शुद्ध हो, ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम बढ़े, इस भाव से मैं पूजा पाठ रखता हूं। कितने रखते हैं? अगर रखते हैं वो जेन्युइन लोग हैं, उनको इस ईश्वर के प्रति जेन्युइन श्रद्धा है, वो ईश्वर को जेन्युइनली समझते हैं, नहीं भी समझते जानने की कोशिश करते हैं। पर कितने ऐसे होते हैं जिनकी पूजा पाठ व्रत उपवास इसलिए होता है क्योंकि उनका मन साफ हो, उनका मन पवित्र हो, उस ईश्वर से प्रेम कर सके जिसने उनको बनाया, जिसने संसार को बनाया, जिसने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की। नहीं है ऐसा, नहीं क्या आप और हम ही सब ऐसे ही है? हर धर्म में, हर रिलीजन में यही बीमारी है। जो रिलीजन जितना शॉर्टकट रास्ता बताए उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है, जो बाबा जितना बढ़िया शॉर्टकट रास्ता बताए वहां उसके फॉलोअर्स उतने ज्यादा मिलते जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता क्या है, सीधा रास्ता क्या? सीधा रास्ता है कि मेहनत करो, बड़ा बनोगे, कमाओगे। शॉर्टकट क्या है? मेहनत नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी है, आसानी से पैसा मिल जाए बेईमानी करके, ब्राइब करके, ये शॉर्टकट है। इसीलिए हमारे लिए ये सब चीजें सुनना जानना, आपको ऐसे चीजें सुनने को भी कम मिलेगा। कौन बताएगा किसको अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने की शौक है कि वो आपको बताए कि आप जो कर्म करते हो उसको फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ईश्वर बिल्कुल एब्सोल्यूट जस्टिस के बेस पर आपको रिजल्ट देगा, आप कुछ भी करो। इस बोलने का मतलब समझते? फिर अगले दिन कोई नहीं यहाँ आने वाला, पंडित जी, बाबा जी, स्वामी जी, महाराज जी, कुछ करो, मेरा भला कर दो, बाबा से कुछ रिक्वेस्ट करो, कोई आएगा नहीं। इसलिए कौन जाएगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने ऐसे बेवकूफ आदमियों को, लोगों को समझाने के लिए, उनको एनलाइटेंड करने के लिए कि ईश्वर ऐसा होता है? फिर मेरी दुकानदारी का क्या होगा? मुश्किल काम है। पर जो आपके ऋषि हैं, मुनि हैं, और आपको गर्व करना चाहिए, आप उन ऋषि मुनियों के संतान हैं, जो सत्य के सिवा और कुछ नहीं देखते थे, जानते थे, समझते थे, और वही बोलते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में वही लिखा है जो सच है, जो उन्होंने रियलाइज किया। कोई फॉलोअर बनाने के लिए नहीं, कोई साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, कोई अंपायर खड़ा करने के लिए नहीं, इन्होंने तो अपने जो किताबें लिखी वहां कोई नाम तक भी नहीं लिखा। आपके वेद, आपके उपनिषद, आपके दर्शन शास्त्र, आपके कोई भी शास्त्र उठाइए हिंदू धर्म के पुराने शास्त्रों को, पुराने जो ऋषि मुनियों के तरह लिखा हो, कहीं उन्होंने अपना नाम तक भी लिखा हो कि ऑथर ये है। जो कुछ आप जानते हैं, हम जानते हैं, वो तो बाद में रिसर्च करके ढूंढ के अनुमान लगा रहे हैं, इन्फरेंस कर रहे हैं कि हो सकता है यही लिखने वाला हो। ईशु उपनिषद में का पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मा गृध कस्य स्वीधनम्. इसका मतलब है ऑल दीज बट सो एवर ट्रांजिएंट इन दिस एवर मूविंग वर्ल्ड इज परवेडेड बाय द गॉड. ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा परवेडेड है, फैला हुआ है ये सब कुछ. मतलब इस एवर मूविंग वर्ल्ड में, जगती में, जो कुछ भी जगत है, जो कुछ भी ट्रांजिएंट है, क्या चीजें हैं जो ट्रांजिएंट है? आप भी हो, थोड़े ही, हमेशा के लिए थोड़े ही हो. आपका घर भी है, आपकी पड़ोसी भी है, आपकी कॉलोनी भी है, आपका देश भी है, आपकी अर्थ भी है, आपका हवा पानी सब कुछ तो ट्रांजिएंट है, सब तो चलता रहता है, बदलता रहता है. कौन सा चीज है जो हमेशा एक जैसा रहता है? कुछ भी नहीं. इवन ये यूनिवर्स भी बदलता रहता है. तो बदलते हुए इस दुनिया में बदलने वाले हर चीज के अंदर तुम समाये हुए हो एवर एग्जिस्टेंट के रूप में. इसीलिए उपनिषद का ये सलाह है, ये एडवाइस है, तेन त्यक्ते न भुंजिता. जब आप भोगते हो, जब आप एंजॉय करते हो इस मैटेरियल वर्ल्ड को, ये सोच के एंजॉय करो ये उसी का दिया हुआ है. जब आप पानी पीते हो, पानी से बनाए हुए चीजों को खा पीते हो. जब इस दुनिया के, इस मैटेरियल वर्ल्ड के चीजों को यूज करके तुम भोगते हो, वो तुम्हारा घर हो, तुम्हारा खाना हो, वो तुम्हारे कपड़े हो, तुम्हारे पैसे हो, किसी को भी एंजॉय करते हो, ये सब उसी का बनाया हुआ है, उसी का दिया हुआ है, ये सोच के भोगो. इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं, कोई भी यज्ञ में तो मंत्र पढ़ने के आखिर में आप क्या बोलते हैं? स्वाहा के बाद इदं न मम, इदं मतलब दिस, न मतलब नट, मम मतलब माइंड, इट्स नॉट माइंड. जो कुछ मैं ऑफर कर रहा हूं, जो कुछ भी, अगर आप देव यज्ञ कर रहे हैं, मतलब अग्नि में आहुति दे रहे हैं, तो आप घी सामग्री अगर ऑफर कर रहे हैं, अगर आप ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं जिसमें आप भक्ति कर रहे हैं, तो आप अपने सेल्फ एरोगेंसी को, ईगो को आप ऑफर कर रहे हैं. अगर आप अतिथि यज्ञ कर रहे, मतलब आपके घर में आने वाले हर वो समाज सेवक, साधु सन्यासी, समाज की सेवा करने वाले लोगों की आप हेल्प कर रहे हैं, उनको रेस्पेक्ट दे रहे, वहां भी आप ऑफर कर रहे हैं. आप अगर भूत यज्ञ कर रहे, इंसान के अलावा जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, उनके ख्याल रख रहे, वहां भी आप यज्ञ कर रहे हैं. अगर आप पितृ यज्ञ कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, वहां भी आप कुछ ऑफर कर रहे हैं. किसी भी यज्ञ में, जो पांच महायज्ञ हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, कोई भी चीज आप ऑफर करते हैं, उस ऑफरिंग के पीछे मंत्र कहता है इदं न मम, ये जो कुछ मैं ऑफर कर रहा हूं ये इन रियलिटी इट्स नॉट माइन. जिस घर में आप रहते हैं, जब गृह प्रवेश संस्कार होता है, तो उसमें पहला संस्कार होता है, जब नया घर आप बनाते हैं, तो घर के जो मालिक हैं, वो घर के बाहर खड़े होते हैं और एक मंत्र बोलते हैं, किम ब्रह्म अहम प्रविशानी, क्या हम इस घर में प्रवेश करें? तो ब्राह्मण कहता है प्रविशताव, प्रवेश करिए. परमिशन मांगता है कि मैं इस नए घर में प्रवेश करूं. किससे परमिशन मांगता है, क्यों मांगता है? वाला घर तो उसका है, पैसे देकर खरीदा है, बनाया है. रिचुअल क्यों बनाया गया कि परमिशन लेकर के घुसो? वो घर जिसको तुम कहने, अपना कहने वाले हो, तुम्हारे से पहले लाखों सालों तक इस जमीन पर कितने लोगों ने अपने मालिकाना हक दावा किया है, अपनी ओनरशिप की दावा किया है, यह है ना? जिस घर में आप रहते हो, 50 साल पहले वहां घर नहीं होगा, उस जमीन का मालिक और कोई होगा, 2 साल पहले और कोई होगा, 500 साल पहले और कोई होगा, आगे के लाखों सालों के बाद भी कोई ना कोई ओनर बन भी आते जाएंगे. जमीन की टुकड़ा तो वही का वही है ना.
आई एम द ओनर बोलने वाला आदमी बदल जाता है, मतलब ओन्ड चीज तो वैसी की वैसी बनी हुई है। इवन एक दिन ऐसा था उसका कोई ओनर नहीं था, कोई आदमी नहीं था, तब भी वो जमीन की टुकड़ा वहां है। एक समय ऐसा आएगा जो कोई आदमी नहीं होगा जो उस जमीन का ओनर बने, जमीन की टुकड़ा तब भी रहेगी, ओन्ड बाय द रियल ओनर। ईशावास्यम इदम सर्व, उसका जो असली मालिक है परमात्मा जिसने बनाया है वो उसकी है। मैं तो अपनी मेहनत से जैसे ऑफिस में काम करता हूं, आपकी कंपनी के पास बहुत पैसा है, पर आपको इतना ही मिलता है जितना आप कमाते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप ये काम करेंगे इतना मिलेगा, उतना आप यूज कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं जब तक आप उस कंपनी में काम करते हैं। ये ईश्वर की मालिकाना में ये पूरे संसार को आप भोग सकते हैं, यू आर फ्री टू एंजॉय इट। तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक आप एंजॉय करने लायक हैं, और उतना एंजॉय कर सकते हैं जितना आप कमा सकते हैं, जितने आप श्रम कर सकते हैं, जितने आपके कर्म आपको फल देने लायक बनता है, और उतने दिन तक जितने दिन तक आप भोगने लायक हैं। पर इसका अर्थ नहीं कि वो आपका है, आप बोलते रहिए। आप तो बच्चों को भी मेरा मेरा बोलते हैं, 20-25 साल के बाद वो अपने राज्य में रहते हैं, आप घर में बैठे बैठे चिल्लाते रहते हैं मेरे बच्चे, कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो अपने लाइफ जीते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ जीते हैं। आप रोते रहो, करते रहो, सर फोड़ते रहो, ऐसा मत करो, कौन सुनता है? आपके बच्चे ही नहीं सुनते तो जमीन जायदाद क्या सुनेंगे, वो तो मैटेरियल है। इसीलिए कहा कि तेना त्यक्तेना भुंजिता, इट्स गुड टू एक्सेप्ट द रियल ओनरशिप। तुम सिर्फ ट्रस्टी हो, ट्रस्टी समझते हैं, एक ट्रस्ट है, आप उसमें वन ऑफ द ट्रस्टी मेंबर है। आपकी राइट, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है, हो सकता है आपकी राइट है कि उस ट्रस्ट की चीजों को आप सही इस्तेमाल करें, पर आप कभी दावा नहीं कर सकते कि मैं इसका ओनर हूं। इसी को संस्कृत में हमारे परंपरा में कहते हैं संन्यास। सन्यासी कौन है? कपड़े बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता है। आप और मेरे में से हम जहां रहते हैं, जो पैसा हमारे पास है, जो कपड़े हमारे पास है, जो संपत्ति हमारे पास है, जो घर हमारे पास है, जो लोग हमारे हैं, जब हम उनके ट्रस्टी के रूप में अपने आप को देखने लगेंगे, ट्रस्टी मीन्स नॉट ओनर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों के प्रति, तो आप सन्यासी बन गए। और जब आप सोचते हैं कि आई एम द ओनर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो आप नॉर्मल गृहस्थी बन गए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सन्यासी एंड गृहस्थ, नथिंग एल्स। न त्यक्ते न भुंजी था, उसका दिया हुआ सोच के भोगो, मां गृध कस्य स्विधनम। तो किसी की दूसरे धन पर लालच करना नहीं, क्यों नहीं? कस्य स्विधनम, ये मंत्र का क्वेश्चन है, सटेरिंग है। क्या, सिंस हुम इज दिस वेल्थ, ये किसका धन है? ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, किसका धन है? तुम कहोगे मेरा धन है, मेरा बोल के चले जाओगे, वो धन तो वहीं पड़ा है, जो घर है, जो संपत्ति है, जो जायदाद है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो तो रह जाएगा, वो भी नष्ट होगा, पर तुम्हारे बाद नष्ट होगा। तुम पहले मरोगे तो जमीन जायदाद बाद में जाएंगे। उनको जाने के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख साल चाहिए उस जमीन के टुकड़े को नष्ट होने में, करोड़ों साल लग जाएंगे, तुम तो सिर्फ 50 साल में निकल जाओगे, तुम्हारे बाद हो जाएगा। किसका धन है? इसीलिए लालच मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं होता। जितना तुम कमा सकते हो कमाओ, उसमें एंजॉय करो।
श्वेताश्वेत उपनिषद में
उस ईश्वर के बारे में एक प्रश्न है, अगर वो ईश्वर है तो कहाँ है, कैसा है, क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं मिलता, तो उसके पर एक प्रश्न आया। तो श्वेताश्वेत उपनिषद उसके उत्तर देता है उन लोगों के लिए जो पूछते हैं, अगर जो हमारे बच्चों के लिए या वो जो लोग सवाल पूछते हैं, ईश्वर है तो फिर क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं दिखता। क्रतिलेषु तैलं दधिनी वसर्पि क्रापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः एवम् आत्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा यो नु पश्यति।
तिलेषु तैलम् अज ऑयल इन सीसम सीड, मस्टर्ड सीड है, सीसम का सीड है, पीनट सीड है, किसी बात सीड जिसे आप तेल निकालते हो। बच्चे ने आपसे पूछा ये तेल कहां से आता है, तो आपने कहा ये मस्टर्ड से आता है, ये सीसम से आता है, ये पीनट से आता है। तो लाएगा एक सीसम का सीड लाएगा, तिल का बीज लाएगा, सरसों लाएगा, और उसको काटेगा फाड़ेगा, बोले कहां है तेल, इसमें तो कहीं दिखता नहीं। पीनट लाएगा, उसके आप से हमने तोड़ेगा, बोले कहां है तेल दिखाओ, आप दिखा पाओगे नहीं पाओगे, पर तेल तो उसी से निकलता है ना, वो उसके जर्रे जर्रे में है, उस तिल के बीज के जर्रे जर्रे में वो तेल है, पर हमें आपको दिखता नहीं है। पर वो तेल जो समझदार व्यक्ति है, जिसके पास वो अकल है, वो जानता है कि उसके अंदर तेल है, और उसको ये भी पता है उससे कैसे निकाला जाए, उसको प्रेस करता है, उसको मशीन में इतने ज्यादा प्रेस किया जाता है वो तेल निकल जाता है।
दधिनी व सर्पी ही, सर्पी कितने मक्खन को है? बटर को, जैसे दही में मक्खन होता है। आपके बच्चे आपको पूछेंगे, छोटे बच्चे 3-4 साल के, ये घी कहां से आया, बटर कहां से आया, आप कहोगे ये दूध में है, दही में है, बोले कहां पर है दिखाओ, कैसे दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे। पर जो समझदार लोग वो जानते कि ये जो मक्खन है वो दूध के दही के जर्रे जर्रे में है, उसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करो तो आप मक्खन पा सकते हो। खाली मोटी बुद्धि में मोटे आंखों में कहोगे निकालो, ऐसे नहीं निकलेगा। दूध को गर्म करो, दही बनाओ, उसको मथो, चर्न करो, फिर देखो निकलेगा। हर चीज के एक प्रोसेस होता है ना, जिम से दौड़े दौड़े आए, क्लब से दौड़े दौड़े आए, बोले बताओ ईश्वर कहां है, मुझे देखना है। जैसे आपका बच्चा दौड़ के आया, बोला दिखाओ सरसों में कहां तेल है, बेवकूफी है। स्रोत स्वरणी आप स्रोत स्वरणी शुचाग्नि, जो रिवर बेड में जैसे पानी नदी के नीचे होता है, जमीन में आपको पानी चाहिए। किसी ने पूछा कि मुझे पानी चाहिए, मैं पानी कहां से लाऊं, बोले जमीन के नीचे, जमीन में पानी है, तो कोई जमीन में तो दिखता नहीं है, जमीन के नीचे उसकी सोर्स है, खोदो, खोदोगे तो मिलेगा। अरणी शु आप, अरणी कितने लकड़ियों में, लकड़ी ये जो हवन में आप लकड़ी डालते हैं उसको क्या बोलते हो, समिधा, आपको पता है समिधा का रियल ट्रांसलेशन क्या है, गुड फ्यूल, जो अच्छी तरह जलता हो। तो लकड़ी को लीजिए आप, जोर से रगड़िए, आग निकलेगा। आपका बच्चा आपसे पूछे, देखिए हम भी हर व्यक्ति अपने से ज्यादा लेवल के नॉलेज के लिए बच्चा होता है, जो नहीं जानता वो बच्चा है, जो जानता है वो कुछ बुड्ढा बुजुर्ग है। उसी को हमारे शास्त्रों में बुढ़े आदमी की डेफिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो बढ़ चुका है, मैच्योर मैन को वृद्ध कहते हैं, इमैच्योर को बाल कहते हैं, ध्यान दीजिए। मैं 70 साल का हूं, बड़ा इमैच्योर हूं तो मैं बच्चा हूं। मैं 12 साल का हूं, बहुत मैच्योर हूं तो मैं वृद्ध हूं। डिपेंड करता है आपके अंदर मैच्योरिटी कितनी है। तो कोई बाल आपसे पूछे, बच्चा आपसे पूछे, ये आग कहां है, बोला अभी लकड़ी में है, पत्थर में है। पत्थर को तोड़ेगा थोड़ी आग निकलेगा, थोड़ा फोर्स करो, रगड़ो, और उतना रगड़ो जितने रगड़ने से आग निकल सकता है तो निकलेगा। अरणी सुचाग्नि, इसी तरह ये आत्मा, ये परमात्मा इस संसार के हर जर्रे जर्रे में है। फिर करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल वही जरूरत है जैसे सरसों से तेल निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, लकड़ी से आग निकालने की एक प्रोसेस होता है, दही से घी निकालने की एक प्रोसेस होता है। इसी तरह इस संसार में से परमात्मा को जानने के लिए एक प्रोसेस है। इस संसार का आपका शरीर भी उसका एक पार्ट है और वो आपके अंदर भी है। कहानी आपने सुनी होगी, बहुत बार बताया है। एक राजा, सन की राजा, तो उसने अपने सारे राज दरबार में बैठने वाले सब ज्ञानी पंडितों से कहा, राज पंडितों से, कि आप लोग बार बार बोलते हो ईश्वर है, वो करता है, ये करता है, कौन मुझे बताएगा कि ईश्वर क्या है, कहां रहता है, क्या करता है। तो पंडितों ने अपने बताया, जो वही बताया जो शास्त्रों में लिखा है, जो सुना है, पढ़ा है, जैसे आप बताते हैं मैं बताता हूं। राजा ने कहा ये सब बकवास नहीं चलेगा, मुझे प्रूफ चाहिए, देखना है, कुछ ठोस एविडेंस के साथ बताओ। ऐसे कोई भी आकर बताकर चला जाता है, राजा लोगों के थोड़ा अकड़ होता है। आपको पता है दुनिया भर के हिस्ट्री में आप देखेंगे ज्यादातर राजा अपने आप को ईश्वर घोषित करते थे। आप प्राचीन रोमन कल्चर देखिए, ग्रीक कल्चर देखिए, इजिप्ट कल्चर देखिए, सब राजा ईश्वर होते थे। हमारे यहाँ इंडियन कंसेप्ट में भी राजा को भी ईश्वर कहा जाता था, वो अपने आप को ज्यादातर राजा समझते, मैं ही सब कुछ हूं। आजकल उनकी जगह ले गए हमारे ये धर्माचार्य लोग, बाबा लोग, सब ईश्वर बन गए, क्योंकि डेमोक्रेसी हो गई। अब राजा लोग ज्यादा ईश्वर दावा नहीं कर सकते, पब्लिक जूता मारती है। अब बाबा लोगों ने छीन लिया, भाई हम भगवान है, भगवान के अवतार है, हम भगवान। तो एक राजा को ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे आपने पुराणों में कहानियां सुनी, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कंस, रावण, सब सोचते थे कि उनको बड़ा ये प्रॉब्लम मेक ट्रबल मेकिंग है कोई भगवान का नाम ले। मैं राज, मेरा रूल मैं चलाता हूं, बीच में कहां ले आते हो, कौन भगवान है, जो पूछना है मुझे पूछो। राजाओं को इससे बड़ी एलर्जी होती थी भगवान के नाम पर। तो वो राजा ने कहा साबित करो कोई ईश्वर विश्वर है। तो पंडितों ने खूब शास्त्र के प्रमाण दिए, समझाया बुझाया। आप लोग तो आसानी से मान जाते हो क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम ईश्वर के साथ कम चलता है, पर राजा लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है समझा पाना। तो पंडितों समझा नहीं पाए, तो राजा ने कहा एक हफ्ते का टाइम देता हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे ठीक से समझा दो, नहीं तो राज्य छोड़ के चले जाओ। समझाने का मतलब क्या है? समझाने तो समझाने की कोशिश करते हैं, पर राजा सन की है, उसको प्रूफ चाहिए, देखना है। विद्वानों में समस्या हुई, परेशानी, क्या करें, कैसे करें, नहीं तो ये सारे राजपाट छोड़ के, राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। जो राज्य का राज पंडित है, जो मुख्य पंडित है, जो चीफ स्कॉलर, जो भी आजकल डेमोक्रेटिक वे में आप कहते हैं चीफ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट, जो भी कहीं, तो उन दिनों जो भी उनका मुख्य पंडित था, तो उसके घर में 6ठे दिन बीत गया, पति पत्नी बात कर रहे हैं, अब क्या करें, राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, कहां जाएं, क्या करें, कैसे जिएं। तो उनका क्या 10-12 साल का बेटा था, तो उसने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बोले तुम क्या समझोगे, चलिए बताइए। तो माँ ने बताया कि पापा को ये प्रॉब्लम है, राजा ने ऐसे कंडीशन रखा है, अगर नहीं कर पाए तो राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा, हमें फिर दूसरे राज्य में जाना होगा, आप कैसे रहेंगे, क्या करें, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, बड़ी मुश्किल है। तो बेटे को बोला अच्छा कि मैं कल जा सकता हूं आपके साथ, बोले तू जाकर क्या करेगा। माँ ने कहा ले जाओ बच्चा जिद्दी करता है, देख आएगा राजसभा कैसी है, राजा कैसे हैं, तेरा राजपाट समझ जाएगा। तो ले गए बच्चे राजा, राजसभा शुरू हुई, कोर्ट शुरू हुआ। राजा ने दोबारा सवाल पूछा, कोई है जो मुझे बताए विद प्रूफ विद ऑल द एविडेंसेस ईश्वर कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा कुछ करता है। अब जो समझाना था समझा चुके हैं, अब नया कहां से क्या लाए। तो बच्चा हाथ उठाकर खड़ा हुआ, बोला मैं बताऊंगा। उसके पापा परेशान हुआ, राजा को ललकार रहा है, पर जब एक बार हाथ उठा दिया तो अब क्या करें। राजा ने बोला तू क्या बताएगा, तू तो छोटा सा बच्चा है। ना बच्चा होने से क्या होता है, अगर मुझे कुछ पता है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बताऊंगा। चलो बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। बच्चे ने बोला कि ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपका नौकर तो हूं नहीं, मेरा बाप आपका नौकर है, मैं तो बच्चा हूं। भले बताओ कि राजा बन के सुनना चाहोगे तो मैं क्यों आपको बताऊं, भला अगर शिष्य बनोगे तभी बता पाऊंगा। तो राजा को मजाक सूझा, बोले छोटा बच्चा मजाक कर रहा है, बोले ठीक है चलो तुम्हारा शिष्य बना बताओ। बोले अगर शिष्य बना गुरु मानते हो तो ऐसे थोड़े ही चलता है कि गुरु नीचे बैठे और तू ऊपर बैठा, शिष्य ऊपर बैठा, ऐसे थोड़े ही चलता है। कुछ गुरु के तरह ट्रीट करो ना, तू ऊपर बैठ के हुक्म चलाता है, बोलता है शिष्य हो तो। बोले आ जाओ, राजा को मजाक सूझा, शिष्य वो बच्चा ऊपर गया, बोले सिंहासन पर मुझे बैठाओ। राजा ने अपने सिंहासन पर उसको बैठाया, बोले आप बताओ, बोले कुछ ट्रीटमेंट करो, कुछ ट्रीट करो, गुरु आया है, खिलाओ पिलाओ, क्या खाओगे पियोगे, दूध पीऊंगा मक्खन वाले दूध। दूध लाए, बोले इसमें मक्खन कहाँ है, बोले मक्खन दूध में थोड़े होता है, वो तो मक्खन निकालनी पड़ती है, कैसे निकलेगा फिर मक्खन ये तो बताओ ना। दूध को दही बनाते हैं, दही को चर्न करते हैं, फिर उससे निकलता है बटर निकलता है, तब ये तो दूध है। ओ तो इतनी सारी प्रोसेस करके फिर मक्खन निकालते हैं, तो फिर तुम्हें तो सब कुछ समझ में आ गया। फिर बोले क्या आ गया, बोला जो जो सुनना चाहता था उन्होंने मैंने बता दिया। बोले क्या बताया, यही तो बताया ईश्वर क्या करता है, कभी राजा को सिंहा किसी कभी आदमी को सिंहासन पर बैठाता है, कभी नीचे उतारता है, कभी बच्चे को सिंहासन पर बैठाता है, कभी नीचे उतारता है, रहता कहां है, सब जगह रहता है। जैसे तुम्हारे दूध में मक्खन की तरह तू मुझे दिखा नहीं सकता, सिर्फ ये एडवाइस दे सकता है कि दूध को दही बनाओ चर्न करो तब निकलेगा, इसी तरह मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, तू मुझे दूध में मक्खन दिखा नहीं सकता, तुझे मैं कैसे ईश्वर दिखाऊं, करो चर्न करो अपने आप को उसमें से निकलेगा देखोगे। देवियों सज्जनों सच यही है कि हम हर चीज के लिए मेहनत करते हैं और सोचते हैं, ईश्वर की बात आते ही सीधा सवाल पूछते हैं कहां है दिखाओ। वो हर कोने कोने में आपके अंदर भी है बाहर भी है। जिस दिन मन करे देखने की, अपने मन को एक ही सरल सा उपाय है, बिल्कुल सिंपल रास्ता है, मन को साफ कर दो। जिस दिन तुम्हारा मन साफ होगा उसी क्षण आपको ईश्वर का दर्शन होगा, उसी क्षण। नथिंग एल्स टू डू, किसी के चरणों में गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, करोड़ों डॉलर खर्च करने की जरूरत नहीं, कहीं माथा फोड़ने की जरूरत नहीं, अपने मन को साफ कर दो उसी क्षण ईश्वर दिखेगा। द प्रॉब्लम इज सिंप्लिसिटी सबसे हार्ड वर्क होता है, सिंपल बनना। पर अगर ये कर सके, अपने मन को अगर साफ कर पाए, और ध्यान रखिए आपकी पूरी परंपरा, आपकी पूरी धर्मचर्या, जो भी हम पूजा पाठ व्रत उपवास जो भी करते हैं उसका उद्देश्य यही था। देवियों सज्जनों क्या था, मन को साफ करना, निर्मल करना, प्यूरिफाई करना। पूजा पाठ से धार्मिक कृत्य से ईश्वर नहीं मिलता, ईश्वर मिलने का रास्ता बनता है। वो रास्ता क्या है? आपका मन साफ हो। मन साफ कैसे होता है? साधनाओं से, धार्मिक साधनाओं से। पर अगर धार्मिक साधनाओं में आपकी आस्था नहीं है, आपके मन में कोई भाव नहीं है, तो वो रिचुअल बनते, कर्म कांड बनते हैं। और कर्म तो कर्म, कर्म कांड तो कांड होता है। हमारे यहां ईश्वर के बारे में एक दो और कंफ्यूजन है, खास करके अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का और अंग्रेजों की ज्यादा समस्या है। अंग्रेजों की समस्या समझ में आती है, अंग्रेज मतलब वेस्टर्न स्कॉलर्स की, पर प्रॉब्लम है जब हमारे अपने लोग, अंग्रेजी पढ़े हुए लोगों की समस्या समझ में नहीं आती, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि हम अपने चीज को पड़ोसी के नजर से देखने की कोशिश करते हैं। मेरा बाप कैसा है, मैं अपने नजर से नहीं, मैं अपने पड़ोसी के बाप बेटे के नजरिया से जब देखता हूं तो एक अलग टाइप का दिखता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि हम खून से तो इंडियन है, चमड़े से इंडियन है, पर पूरा सोच विचार अंग्रेजियत से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका आने पर आपको हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने पर आपका कुछ भी नहीं बदला, आपकी ना गंदगी बिचली बदली, ना आपका स्वभाव बदला, ना आपने जाति छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, सब बना के रखा है। आप प्योर इंडियन हो, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। सारे इंडियन गंदगी के साथ हम बने रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो तो हमारी जड़ में ही बीमारी है, वहां पर बीमारी है। हमारे स्कूल से ही पढ़ाई हुई इसी से होती है। जो ब्रिटिश लिख कर चले गए, हमारे हिस्ट्री क्या है, हमारे रिलीजियन क्या है, वो बता गए जो उन्होंने बताया। हमने अपनी चीजों को उनकी भाषा में पढ़ी, उनकी नजरिया से पढ़ी, इसीलिए हमारी ये प्रॉब्लम हुई। दो चार चीजें आज रखेंगे, बाकी चीजें अगले बार के लिए चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज का जो मॉडर्न हिंदुइज्म है, वो मोस्टली उसमें मोर देन 60% क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का सोच उसमें है। आप जो सोचते हो, जैसे आप एक नॉर्मल आदि हिंदू आदमी आराम से बोल लेगा, ऊपर वाले की मेहरबानी है, आपको पता है इट्स ए अब्राहमिक कंसेप्ट। हिंदुइज्म में ईश्वर ऊपर वाला नहीं होता है। कहां होता है ईश्वर? कहां रहता है? सबके अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, पानी में, हवा में, तुम्हारे मेरे अंदर है, पूरे में है, अच्छा में, सब जगह है। तो ऊपर वाला कहां आ गया आपके मेरे व्यास में? ये हमने किराए पर लिया है। ऐसे आप अगर ढूंढेंगे अंदर अंदर, वो भगवान सब माफ कर देता है। ये माफ करने का कंसेप्ट हिंदुइज्म में कैसे आएगा? जो धर्म कर्म सिद्धांत को मानता हो, लॉ ऑफ कर्म को मानता हो, वहां माफ करने का कंसेप्ट आएगा ही कैसे? दो तो अपोजिट चीजें हैं। अच्छा करो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करो बुरा फल मिलेगा। ईश्वर क्यों भला माफ करेगा? कोई बेईमान नेता थोड़े ही है, कोई बेईमान ब्यूरोक्रेट थोड़े ही है कि रिश्वत खा के आपको माफ कर देगा और इससे रिश्वत नहीं लेगा तो इसको पनिश करेगा। ये तो सिर्फ बेईमान आदमी माफ करता है ना। माफ करो तो सबको करो। मैं क्यों आपको ही सिर्फ माफ करूंगा और उसी क्राइम के लिए इनको क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप मेरी तारीफ करते हैं, आप मेरी गुलामी करते हैं, इसलिए मैं आपको माफ करूंगा। सो कॉल्ड रिलीजियंस गॉड तो यही है, मुझे मानो माफ है। तो इसलिए ये जो माफ करने का कंसेप्ट हमारे यहां नहीं था, कर्म सिद्धांत है, ईश्वर जस्टिस है, एब्सोल्यूट जस्टिस करता है, और उसका सबसे बड़ा नमूना है कर्मफल सिद्धांत। ये माफ करना अब्राहमिक कल्चर का सोच है। कुछ भी करो, अंदर आओ और अपने कन्फेस करो फादर के सामने, सब माफ। इसी तरह हजारों चीजें हमारे हम 60-70% जो सो कॉल्ड मॉडर्न हिंदुइज्म में जो हिंदुइज्म के नाम पर फैलता है वो सब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के जितने कचरे हैं वो सब आ गए। उनमें भी बड़ी अच्छाइयां हैं पर हमने सिर्फ कचरे सारे आसान, कचरे लेना आसान होता है जी देवियों सज्जनों, क्यों? शॉर्टकट, शॉर्टकट समझते, ब्राइब दे करके काम करा लेना, मेहनत करके काम करना, ब्राइब देकर करना आसान होता है पर ब्राइब देना कचरा है। दुकान में ईमानदारी से बिजनेस करना ये धर्म है, बेईमानी करके बिजनेस करना, मंदिर में दान दे करके पूजा पाठ करके पाप को पुण्य में कन्वर्ट करना ये ब्राइब देना होता है और ये कचरा है ना। इसीलिए वो समझने की जरूरत है कि हिंदू का असली कंसेप्ट क्या था और हम इतने हजार सालों में कैसे हमने उन सबको छोड़ के नए नए चीजों को अपना लिया। वेस्टर्न कल्चर को अपनाना बुरी बात नहीं है, उनमें इतनी सारी अच्छाइयां हैं, हम अमेरिका आकर भी नहीं सुधरते। हमारे बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो अभी भी गंदगी से भरा पड़ा है, ये नहीं सीखा अमेरिका आकर कि साफ सफाई रखना जरूरी है। हम वेस्ट से ये नहीं सीख पाए पंक्चुअल होना जरूरी है, हम वेस्ट से ये नहीं सीख पाए कि सामने वाला कितना जान पहचान का हो ना हो मुस्कुराहट में बात कर ले। हम यहां भी इंडियन इंडियन को देखता है मुंह लटका के जाता है, गोरे को देखो तो मुस्कुराता है। वेस्ट से बहुत कुछ सीखने को है हमें, और मैं उन इंडिया में रहने वाले इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो अब यही रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ सीखने की है पर हम सिर्फ उनकी उलटपटांग चीजें सीखते हैं जो यहां के असली लोग, यहां के लोग भी जिसको पसंद नहीं करते हैं। हम वहां के वो अल्ट्रा मॉडर्न कल्चर को बड़े जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं जो यहां के समझदार लोग भी समझते हैं ये ठीक नहीं है। हम यहाँ के अल्ट्रा मॉडर्न फूड जंक फूड को पसंद करते जो यहाँ के भी लोग समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, जो समझदार लोग हैं। हम इनके रिलीजन के सो कॉल्ड चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको पता है मोर देन 30% अमेरिकन अपने इंडिजिनियस रिलीजन जो भी उनका है क्रिश्चियनिटी है उससे वो अपने आप को अलग कर चुके हैं। क्यों? वो उस बेवकूफ वाले कंसेप्ट से दुखी हो चुके हैं, उनको को समझ में नहीं आता है, इलॉजिकल और स्टुपिडिटी से भरा हुआ कंसेप्ट से वो उब चुके हैं। पूरा यूरोप मोर देन 40% पीपुल अपने रिलीजन को छोड़ चुके हैं और इंडियंस को मजा आता है, जो वो छोड़ते जा रहे उसको एडॉप्ट करने में मजा आता है। इतनी सारी बुराई करने के बाद थोड़ी अच्छाई बता दूं, हमारे यहां दो तीन चीजें थी ईश्वर के बारे में समझने की। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं उस वर्ड के अंदर हमारा कंसेप्ट छुपा हुआ है। ईश्वर, भगवान के जितने नाम आप लेते हैं, भगवान, परमात्मा, थोड़ा फिलोसॉफिकली बोलते हैं तो ब्रह्म, कभी कभी देवता भी बोलते हैं, मंदिर में जो पूजा करते हैं गणेश है कार्तिक जो भी हनुमान है वो देवता, इनको समझने की जरूरी है। आपके अपने शास्त्रों की दृष्टि से, उनकी वर्ड की एटिमोलॉजी की दृष्टि से तब आपको क्लैरिटी आएगी कि सत्य क्या है और कहां पर हम फिसलते हैं। जो ब्रह्म शब्द है फिलोसॉफिकल वर्ड है जिसका रियल मीनिंग होता है ब्रंगते, ब्रंग धातु है बढ़ना, ऑल परवेडिंग, जिसको आप परमात्मा कहते हैं। आत्मा तो आप समझ जाते हैं सोल बींग, परम मतलब सुप्रीम बींग, और उसको हम क्या डिफाइन करते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या होता है? सत एवर एग्जिस्टेंट, जो हमेशा रहता है, चित कॉन्शियसनेस और आनंद मतलब ब्लिस। ईश्वर आनंदमय नहीं है, ब्लिस इक्वल टू ब्रह्म, ईश्वर ही आनंद है। आनंद कोई अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, ऐसा नहीं है। ईश्वर में आनंद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईश्वर ही आनंद है। ईश्वर में सत्ता नहीं है, ईश्वर ही सत्ता है। ईश्वर में चेतना नहीं है, ईश्वर ही चेतन है। ये समझने की जरूरत है। एंड दैट इज एकम अद्वैतम, दैट इज ओनली वन, देयर इज नन एल्स इक्वल टू ग्रेटर और स्मॉलर देन देम हिम, दैट इज कॉल्ड अद्वैत। आजकल अद्वैत वेदांत की बड़ी चर्चा चलती है, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, न्यो वेदांतिज्म है, जिसका मतलब होता है नॉन डुअलिज्म, जो थोड़ा बहुत तो पढ़ते लिखते हैं वो समझते हैं, पर वहां भी कंफ्यूजन है, वो वेद को वेदांत, वेदांत को सब समझ बैठते हैं। अद्वैत का सिंपल मीनिंग है वन विदाउट एनी सेकेंड, द्वैत मतलब डुअलिटी, आ मीन्स नो, ए पर्सन विदाउट एनी डुअलिटी। ईश्वर अद्वैत है, एक है, विदाउट एनी सेकेंड। विदाउट एनी सेकेंड का क्या मतलब है? आपका एक प्रेसिडेंट है, उसका एक वाइस प्रेसिडेंट है, हो सकता है कभी कोई जॉइंट प्रेसिडेंट हो, कोई अंडर प्रेसिडेंट हो, जैसे आपके सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, सुपर सेक्रेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रेसिडेंट छुट्टी पर गए तो वाइस प्रेसिडेंट संभाल लिया, वाइस प्रेसिडेंट बीमार पड़ गए, जॉइंट प्रेसिडेंट संभाल लिया, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। यहां सिंगुलर प्रेसिडेंट विदाउट एनी सब्स्टिट्यूट, द्वैत। और कोई डिप्टी ईश्वर, जॉइंट ईश्वर, असिस्टेंट ईश्वर, नथिंग। ईश्वर एंड ईश्वर एंड ईश्वर, बोला ईश्वर मतलब आप नाम जो भी लीजिए, गॉड लीजिए, भगवान लीजिए, जो भी, वो तो अलग बात है। सो इट इज कॉल्ड एकम अद्वैतम, सिंगुलरिटी विथ नॉन डुअलिटी। उसका कोई शेप नहीं है, गॉड हैज नो शेप और फॉर्म, येट ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सिंपल थिंग है। लॉजिकली देखिएगा, जो सब जगह होगा, सब जगह ऑल परवेटिंग जिसको आप कहते हैं, सर्वव्यापक, उसकी सिंपल कंडीशन है, एक छोटा कंडीशन है कि कोई भी चीज सब जगह या बहुत सारे बड़े जगह पर नहीं हो सकता जिसका कोई फॉर्म हो। ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्म मेरा है तो मैं एक लिमिटेड एरिया घेरूंगा, अगर मुझे बड़ी जगह घेरना है, अनलिमिटेड जगह घेरना है, आई हैव टू बी फॉर्मलेस। सिंपल साइंस की मेथड अप्लाई करिएगा, एनर्जी जब मैटर में कन्वर्ट होता है तो लिमिटेड होता है, एक जगह लिमिटेड जगह घेरता है, लिमिटेड टाइम घेरता है। जब वो एनर्जी में होता है अनलिमिटेड हो जाता है। एनर्जी कहाँ है? बोलिए कहाँ नहीं है, जहां अर्थ है वहां भी है, जहां अर्थ नहीं है वहां भी है, जहां यूनिवर्स है वो भी एनर्जी है, जहां यूनिवर्स नहीं है वो भी, वहां भी एनर्जी है, उसको आप डार्क एनर्जी कहते हो, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है। और एनर्जी का फॉर्म नहीं होता है, पानी बर्फ बने उसका एक लिमिटेशन बनता है, लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाए तो और फैलता है, और अगर उसको आप स्टीम में कन्वर्ट करो वो और जगह, अगर उसको एटम में कन्वर्ट कर दो एनर्जी में तो ज्यादा व्यापक होता जाता है। कितना स्थूल होगा, सिंपल लॉजिक, जो स्थूल होगा वो कम, वो उतना लिमिटेड जगह घेरेगा, उसका एक लिमिटेशन होगा। अगर आप अनलिमिटेड हो तो यू हैव टू बी फॉर्मलेस, सिंपल लॉजिक। अगर आप मानते हो ईश्वर सर्वव्यापक, यू हैव टू एक्सेप्ट इट्स फॉर्मलेस। Yet it is because it is present everywhere, permitting every part of the universe. When it is saying every part of universe, you are also part of the universe. Your body is also part of universe. So, it also inside you and outside of you. बाकी चीजें हम अगले रविवार की चर्चा करेंगे. और भी बहुत सारे सुंदर चीजें हैं ईश्वर के बारे में समझने के, जानने के लिए. आप जरूर जो आज उन्होंने सुना है अगले पार्ट में जरूर रहिए, जिससे कि दोनों पार्ट को समझ के आपको पूरी आइडिया हो सके. इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.